राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा 21 मई 1993 लगभग प्रातः 5 बजे गीता भवन ऋषिकेश में संपन्न हुआ। राम
नाशक नहीं है, निवर्तक नहीं है, लेकिन सत की जिज्ञासा है वो असत की निवृत्ति कर देने वाली होती है। तो सत से भी ज्यादा सत की जिज्ञासा बलवती है, इसमें क्या हेतु है?
नारायण 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 ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोर दृष्टोन्तस्त्वनियोस्तत्त्वदर्शिभिः। ये सत और असत दो चीज है, ये स्वाभाविक है। क्या है कि प्रकृतिम पुरुषम देव विद्यनादि उभावपि, प्रकृति और पुरुष ये अनादि है। तो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है और पुरुष वो अपरिवर्तनशील है। प्रकृति कभी भी अक्रिय नहीं रहती, प्रकृति क्रिय थी, प्रकृति का कर्ण होता कर्ण, तो इसमें क्रिया होती ही रहती है। महासर्ग और महाप्रलय होता है, सर्ग और प्रलय होता है, जन्म और मृत्यु होती है। तो जन्म और मृत्यु होती है, तो जन्म और मृत्यु खास क्या चीज है इसमें थोड़ा समझना है आप लोगों को। तो क्या समझाऊं, आप लोग सुनते हो, जानते हो, समझते हो, परंतु अब चर्चा करनी है तो नई बात कहां से लाएं। जन्म है और जो मृत्यु है ये क्या है? ये परिवर्तन का नाम है। जो बदलती है चीज, उस बदलने का नाम जन्म है और मरना है। मानो पहली अवस्था छोड़कर दूसरी अवस्था जाता है तो दूसरी अवस्था वो जन्म हो गया, और वो दूसरी में तीसरी में जाता है तो दूसरी का मृत्यु हो गई, तीसरी जन्म गई। तीसरी से चौथी अवस्था में जाता है तो पहली अवस्था की मृत्यु हो गई, आगे जन्म हो गया। तो जन्म मरने का जो परिवर्तन का प्रवाह है इसको जीवन कहते हैं लोग। हम जी रहे हैं, ये जी रहे हैं उसका नाम है। जो हरदम उत्पन्न और नष्ट प्रवाह बह रहा उसको जीना कहते हैं, हम जी रहे हैं। और वास्तव में जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। बालक गर्भ में आता है तब से लेकर 100 वर्षों तक कोई ऐसी अवस्था नहीं जो स्थायी रहती हो। तो वो गर्भ में आते ही जन्म हुआ, जन्मते ही वन गर्भ में आते ही मरना शुरू हो गया उसका। अब मर रहा है तो मरा क्या है? वो जल है, वो एक बेर की तरह बन गया, एक पेमल बोन की तरह बन गया, उससे एक और बड़ा एक बुद्ध बन गया, ऐसा बन गया। फिर उसमें जिसने का हाथ पैर के हाथ पैर के अंकुर निकल जाए, माथा का निकल जाए, उन मंगलियां निकल जाए, ये आते रहता है। जैसे अंकुर पैदा होता है, वृक्ष पैदा होता है, ऐसे वो बदलता है। तो बदलने में पहली अवस्था छोड़ के दूसरी अवस्था आता है, तो पहली अवस्था छोड़ी हो तो मर गई, दूसरी अवस्था हो गई, ये जन्म हो गया। तो जन्म मरण का ही प्रवाह है, उत्पत्ति विनाश का प्रवाह है। तो उसमें कब वो अक्रिय कब रहा? प्रकृति अक्रिय कभी नहीं रहती। ये एक सूल रीति से कहते हैं कि प्रकृति सर्ग अवस्था में ये परिवर्तन सक्रिय है और प्रलय अवस्था में प्रकृति मानो अक्रिय है, वहाँ क्रिया नहीं अक्रिय होती है। तो अक्रिय प्रकृति कभी होती ही नहीं। जैसे सूर्य है, ये सूर्य है हरदम चलता है, तो चलते चलते मध्यान्ह दिन आ जाता है, तो मध्यान्ह से इधर जाने लग गया तो लोग तो ये समझते हैं भाई सूर्य अस्त होता है तब रात्रि शुरू हुई है। रात्रि शुरू होती है मध्यान्ह के समय, मध्यान्ह में पूरा आता है तमसस्तंड भास्कर, ऊपर का मध्यान्ह का सूर्य पूरा प्रकाश होता है, उससे पश्चिम तब जाते प्रकाश थोड़ा होता है, प्रकाश कमजोर होता है, वो कमजोर होते होते अस्त होता है, तो अंधेरा बढ़ता रहता है, कमजोर होता है, वो आधी रात तक अंधेरा बढ़ता है, प्रकाश कम होता है, आधी रात से प्रकाश पैदा होता है, अंधेरा कम होता है, ये क्रम कभी समाप्त नहीं होता। ख्याल में ना, आधी रात में क्या था, पूरी पृथ्वी के नीचे सूर्य आ जाता है, तो पूरी पृथ्वी ऊपर आने से अंधकार पूरा हो जाता है। अब थोड़ा सा सूर्य अगर निकला तो उतना प्रकाश यहाँ आ गया आधी रात के बाद में, तो प्रकाश आते 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 वो प्रकाश बढ़ते बढ़ते मध्यान्ह तक बढ़ेगा, और यदि अंधेरा बढ़ते बढ़ते मध्य रात्रि तक बढ़ेगा, तो प्रकाश और अंधकार की क्रिया निरंतर होती है। ऐसे ही सर्ग और प्रलय की क्रिया है, वो सर्ग हुआ तो सर्ग होते ही प्रलय की क्रिया शुरू हो जाती है, और प्रलय होते ही सर्ग की क्रिया शुरू हो जाती है। प्रकृति कैसे रही, ये है प्रकृति की अवस्था। उस प्रकृति को ही असत शब्द कर कहते हैं, असत सत के अर्थ कई तरह के होते हैं, मगर एक अर्थ ये भी होता है। तो वो और परमात्मा तत्व है प्रकृति, पुरुष पुरुष है, ऐसा नहीं है, इसमें कभी क्रिया कुछ हुई नहीं है, नहीं होगी, नहीं हो सकती ही नहीं, सामर्थ्य नहीं है इसमें। इस वास्ते सतः अभाव न विद्यते, सत के सत में अभाव विद्यमान है ही नहीं। सत तो सत्य भाव रूप ही रहता निरंतर, अभाव न विद्यते, नास्त तो विद्यते, असत्ता भाव न विद्यते, असत है उसका भाव, सत्ता विद्यमान नहीं है। थोड़ा ध्यान दे आप, जैसे सत है शरीर है आपका पैदा हुआ, तो इसका भाव विद्यमान नहीं है। भाव विद्यमान कैसे हुआ, छोटा सा बच्चा बड़ा, वो बड़ा बढ़ गया तो सत्य का भाव विद्यमान कहाँ रहा, वो तो बदल गया। असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, सत्ता है ही नहीं उसकी, सत्पना है ही नहीं, वो कायम है ही नहीं। भगवान ने धातु ऐसे दिए, तीन अस भूवीर भू सत्तायाम वीर सत्तायाम, तो सत्ता की बात ही है तीनों। नाश तो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, असत भाव विद्यते एक धातु है ना, सत्ताबाजी हुए। सत्ताबाज होने पर भी इनमें सूक्ष्म भेद है, असत ये असत को कहता है, मानो नहीं पड़े वो कहता है, सत वो सत होने पर वो कहता है, और भू है भू है वो विद्यमान सत का जो सत का पर्याय हुए। इस वास्ते अस्ते भू आदेश हो जाए आठ धातुओं में अष्ट धातु में साठ धातु में रहता है, आठ धातु में भू आदेश हो जाता है, तो भू को सत को दो ही तो एक ही हुए, तो भू के स्थान में अष्ट के स्थान में भू आदेश होता है। तो ये सत्ता पैदा होना पर सत्तापन होनापन और भू का पैदा होनापन, ये दोनों में धातुओं में अर्थ भेद है। और विद्धातु का अर्थ है विद्यमान रहना, एक पैदा होना एक है और एक विद्यमान, तो तीनों धातु एक होते हुए भी तीनों का तीन अर्थ है। तो असत भाव न विद्यते, असत का भाव विद्यमान रहता ही नहीं, कभी असत का भाव विद्यमान रहता ही नहीं, कभी विद्यमान नहीं रहता, क्यों असत वो तो बदलता है ना, तो भाव उसका विद्यमान कहाँ है, विद्यमान हो तो बदलना नहीं चाहिए, बदलना तो विद्यमान नहीं चाहिए। तो असत नित्य निरंतर बदल बदलता है, और सत अभाव नहीं, सत के सत का अभाव विद्यमान नहीं है, सत का अभाव कभी विद्यमान होता ही नहीं, उसका अभाव कभी हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो इसमें अभाव नहीं, अभाव विद्यमान नहीं है, और असल में सत्ता सत्ता भाव विद्यमान नहीं है, वो हरदम ही नष्ट हो रहा है, सत निरंतर ही रह रहा है। अब सत रस निरंतर रह रहे हैं उन सत में, तो सत असत में जो सत्ता है, क्यों नासतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है, तो क्या है कि उनका अभाव विद्यमान है, उसका उसमें भाव ही हरदम अभावी अभाव हो रहा है, अभावी अभाव हो रहा है। तो अभाव में सत्ता सत की है, ये संसार जो है ऐसी संसार की सत्ता, ये सत्ता सत से मिली है, खुद की सत्ता नहीं है, असत को सत्ता सत्ता से मिलती है, असत की खुद की सत्ता है नहीं, क्योंकि विद्यमान है ही नहीं है, तो इसकी सत्ता कैसे हुई, तो इसका होनापन उस सत्ता से है। इस वासु सत्यता ते जड़ माया, जिसकी सत्यता से माया भाष सत्य एव, तो सत्य एव भाष सत्य की तरह दिखती है माया, ये संसार सत्ता दिखता है, तो सत्ता दिखता है, ये संसार की खुद की सत्ता नहीं है, ये सत की सत्ता से असत दिख रहा है। अरे ख्याल में प्रकाश और अंधेरा दोनों है, उसमें अंधेरा घटता बढ़ता है, तो ये घटता बढ़ता है उसमें भी प्रकाश घटता बढ़ता दिखता है, छाया घटती बढ़ती दिखती है, परंतु वास्तव में प्रकाश घटता बढ़ता नहीं है, प्रकाश है जो का क्यों है, इसके आड़ आती तो वो अंधेरा होता है, प्रकाश में कमी आती नहीं, कमी अंधेरे में ही आती है, कम अंधकार है पर ज्यादा अंधकार ऐसे होता है। तो असत चीज है वो अभाव रूप है, तो असत को सत्ता सत्ता से मिलती है, स्वयं सत्ता नहीं असत की, क्यों उसको न विद्युत असत भाव न विद्युत, ऐसे के सत्य विद्यमान है ही नहीं, तो फिर विद्यमान दिखता है, तो वो सत की सत्ता से दिखता है, जैसे रस्सी में सांप दिखता है, तो रस्सी की सत्ता से सांप की सत्ता है, सांप की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, ऐसे इस असत की सत्ता नहीं है, इसको सत्ता सत्ता से मिल रही है, जो वास्तव में सत है उसका अभाव विद्यमान नहीं है, तो भाव नित्य नित्य विद्यमान रहता है, और जिसका अभाव विद्यमान है भाव विद्यमान है ही नहीं, तो ये तो सत से ही प्रकाश होती है। जैसे सूरज के सामने जब ग्रहण आता है तो ग्रहण दिखता है सूरज से ही, सूरज के सामने नहीं आवत आकाश में वो दीख है, तो राहु केतु है तो आकाश में ही, परंतु कब तक नहीं दिखते, जब तक सूरज चंद्रमा के सामने नहीं आते तो वे दिखते ही नहीं, तो दिखते भी है सूरज से और ढकते भी है सूरज को, उनमें दिखने खुद में शक्ति नहीं है, क्योंकि जब तक सूरज चंद्रमा के सामने राहु केतु ना आवे तब आकाश में दिखते हैं क्या, दिखते भी सूरज से है, ढकते भी सूरज को है। ऐसे माया दिखती है, वो माया दिखती नहीं है, वो दिखती है सूरज के प्रकाश में, जैसे सत्ता से दिखती है और सत्ता को ही ढकती है। बदल सत्य सूर्य से ही पैदा होते हैं और सूर्य को ही ढकते हैं। ऐसे असत चीज है नहीं, ये उत्पन्न नष्ट होती है, निरंतर बदलती है, परंतु सत्य को ढकने वाली यही है। अब ये निवृत्त हो जाती है, ये निवृत्त होने पर फिर नहीं होती, क्योंकि ये मूल में है नहीं, निरंतर ये विद्यमान है ही नहीं। नाश तो विद्यते भावा, भावा विद्यते नहीं, उसका विद्वान है ही नहीं भाव। इस वास्ते ये निवृत्त होती है, हरदम निवृत्त होती है, हरदम क्रियाशील है, और सत्य ही इसकी सत्ता होती है कि वो भाव का, इसका भाव विद्यमान नहीं है और असत का अभाव विद्यमान नहीं है। उसका अभाव नहीं होता, ना भावो विद्यते सत्ता, सत्ता अभाव ना विद्यते, अभाव विद्यमान नहीं है। तो विद्यमान सत्ता से अविद्यमान प्रकृति पर असत्ता दिखती है, तो ये इसको पोषक है, इसको दर्शक है, नाशक नहीं है। सूर्य है वो राहु केतु को सूर्य चंद्रमा दिखाने वाले हैं, सूर्य चंद्र को नाश करने वाले नहीं है। ऐसे ये असत असत है, तो असत है असत, असत को सत्ता, सत्ता से ही मिलती है, सत्य से नित्य तत्व से ही मिलती है। तो ये उसका नाशक नहीं है, किंतु पोषक है, प्रकाशक है, पोषक है, इसको इसको सत्ता देने वाला है। जैसे सज्जन आदमी से दुर्जनों को सत्ता मिलती है, परंतु दुर्जन है वो सज्जनों का नाश करना चाहता है, नाश होता नहीं है, इसलिए अंधेरे के प्रकाश का नाश करना चाहता, नाश होता नहीं है। परंतु सज्जन पुरुष है वो दुर्जनों का नाशक नहीं है, दुर्जनों को सत्ता मिलती है। अब वह समझ में नहीं आती है, परंतु उनकी दुर्जनता सज्जनता से ही दिखती है, और सज्जनता दुनिया में हो ही नहीं तो दुर्जनता दिखेगी ही नहीं। क्या श्रेष्ठता नहीं हो तो निकृष्टता दिखेगी नहीं, निकृष्टता की खुद की ताकत नहीं है, उसकी इज्जत नहीं है, पर श्रेष्ठता के कारण से निकृष्टता दिखती है। इस वास्ते संसार में एक नई बात लगेगी आपको, अवगुण है ही नहीं, गुण की कमी ही अवगुण रूप से दिखती है। जो दया की कमी है वही क्रूरता दिखती है, और दया दया है उसका थोड़ा जो कमी पना है वही अवगुण होता है, क्योंकि अवगुण की खुद की सत्ता नहीं है, अवगुणों की सत्ता है। देवी संपद विमोक्ष आया निबंधा जासुरी मता, तो उसमें खुद में ताकत नहीं है ठहरने की। परंतु जब सत्य की जिज्ञासा हो जाती है कि मैं सत्य जानना चाहता हूं, तो उसके सामने असत निवृत्त होने लगता है। होते होते जब तत्व ज्ञान होता है तो असत का अत्यंत अभाव हो जाता है, अभाव अत्यंत होता है, तो अत्यंत अभाव उसी का होता है जो वास्तव में अभाव है, जिसका भाव मिलती है वही जो सदा मिली हुई है, निवृत्त चीज वही होती है जो सदा निवृत्त है, सदा निवृत्त है उसी की निवृत्ति होती है, सदा ही प्राप्त है, नित्य निरंतर प्राप्त है, उसी की प्राप्ति होती है, वो उसकी निवृत्ति होती है। अब ये जीव है ईश्वर का अंश, जैसे ईश्वर अंश है वो ईश्वर नित्य है और सबका प्रकाशक है, ऐसे ये सत्ता इसने खुद ने दी है, मनुष्य ने और जीव मात्र ने सत्ता शरीर को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, प्राणों को जो सत्ता दी है इसकी दी हुई है। खुद की सत्ता कहाँ है? शरीर की सत्ता नहीं है, इंद्रियों की सत्ता नहीं है, प्राणों की सत्ता नहीं है, ये सत्ता है ही नहीं है, क्योंकि तो निवृत्त होता है। अब उसे पहले दिखता था, अब चश्मा लगाते दिखता है, तो चश्मा लगाने का अर्थ हुआ कि बीच जो आंख में कांच है वो हो गया कमजोर, तो दूसरा कांच देकर उसकी मदद कर दी तो दिखने लग गया, तो वो कमजोर होते ही चला जाता है सदा। ये तो निवृत्त होने वाली है, तो निवृत्त की ही निवृत्ति होती है, प्राप्त की ही प्राप्ति होती है, नित्य प्राप्त की प्राप्ति होती है, निवृत्त नित्य निवृत्त की ही निवृत्ति होती है। ये तत्व समझ रहे तो अनित्य के निवृत्त करने की केवल उधर दृष्टि डालनी है, इसको निवृत्त थोड़ा ही करना है। अगर परमात्मा तो नित्य प्राप्त है, उसको प्राप्त थोड़ा ही करना है, अप्राप्त को प्राप्त नहीं करना है, नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, नित्य निवृत्त को निवृत्त करना है। तो निवृत्त करना क्या है, फिर इसका निवृत्ति है ही नहीं ये करना, और वो प्राप्त है ही, ये प्राप्त को प्राप्त करना, निवृत्त करना, मन तो निवृत्त है ही, निवृत्त नहीं है, इसके भाव तो विद्यमान है ही नहीं। तो सत है वो असत को भी सत्ता देता है स्वयं भी। तो सूरज के प्रकाश से ही बदल बनते हैं, बदल रखते हैं, परंतु सूरज है वो उनका नाशक नहीं है। अगर उसे प्रकाश है वो नाशक है, प्रकाश की इच्छा है, प्रकाश करना चाहिए। तो इस तरह से सत है वो असत का नाशक नहीं है, सत और असत वो सत्ता देता है। पर सत की जिज्ञासा जिसकी हो जाएगी, आप इतने बैठे हैं, आप एक बात बताऊं, ध्यान देकर आप लोग सुनो, आप इन बातों को सुनते सुनते आप कई बातों के जानकार हो गए कि नहीं। तो जानकार हो गए, ये जानकारी आपकी खुद है, और असत न जानकारी है, ये भूल है, ये भूल मिटती रहती है। तो भूल को भी सत्ता तो सत्ता ही देगी। भूल है ये किसने प्रकाशित होती है, जो भूल नहीं है उसने, सत्ता ही उससे भूल प्रकाशित होती है। अब भूल को नहीं चाहता है, नहीं चाहता तो ये हुई सत्य की सावधानी, उसकी जिज्ञासा। तो जिज्ञासा जो जो सत की जिज्ञासा होगी, जो जो सत वृद्धि पर वृद्धिंगत होता दिखेगा, असत की निवृत्ति होती दिखेगी। असत की निवृत्ति निवृत्ति है, सत्य की प्राप्ति प्राप्ति है, क्यों असत का भाव है ही, भाव सत्य विद्यमान नहीं है और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। तो वो दोनों ऐसा स्वतः है, परंतु स्वतः सत असत का नाशक नहीं है। अगर सत का नाशक हो तो असत को सत्ता मिलेगी नहीं, क्यों स्वतंत्र सत्ता तो है नहीं, वो असत है, वो कैसे दिखता है, वो सत से ही दिखता है। ये खाला है तीन बात, असत है वो सत से ही प्रकाशित होता है, असत में खुद में प्रकाशित होने की शक्ति नहीं है, क्योंकि वो तो उसका भाव विद्यमान ही नहीं है। तो सत कैसे है, असत कैसे होगा, उसका भाव उसकी सत्ता विद्यमान ही नहीं, कभी विद्यमान हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती ही नहीं। तो अज्ञान की सदा निवृत्ति है, ज्ञान की सदा प्राप्ति है, पर सदा प्राप्ति होते हुए भी ज्ञान अज्ञान का नाशक नहीं है। तो क्या अज्ञान का पोषक है, परंतु ज्ञान की जिज्ञासा जब हो जाएगी कि मैं जानना चाहता हूँ, तो जानना चाहता हूँ इसमें क्या हुआ, जो जानना नहीं चाहता था उसकी निवृत्ति हो गई। अब जानना चाहता शुरू हुआ, और जो जो जानता जाता है त्यों ही त्यों अनजानपना मिटता चला जाता है। अनजानपना जो जो जानता है, जो जो अनजानपना मिटता जाता है। तो जानने की जिज्ञासा में ताकत है ये, जो अनजानपने को मिटा दे। मैं अनजानपने को जानना मिटाता नहीं। अब जो अनजान है वो अनजानपना नित्य अनादि है, अज्ञान अनादि है, तो वो ज्ञान भी अनादि है। ज्ञान तो अनादि नित्य है, ये अनादि शांत है। तो अनादि शांत क्यों है, तो वो जिज्ञास हो गया शांत होगा, ऐसे शांत नहीं होगा। बिना जिज्ञासा के ज्ञान अज्ञान का नाशक नहीं है, इसमें शंका तो बोल दो, ऐसी बात ठीक है। अब जिज्ञासा से जो जो जानने की इच्छा होगी, जो जो जानकारी बढ़ेगी, अनजान मिटेगा, मिटते मिटते साफ ज्ञान होते ही अज्ञान सर्वथा निवृत्त हो जाएगा, अज्ञान साफ निवृत्त होगा साफ ही। तो अज्ञान ज्ञान है वो नाशक कब है, कि जिज्ञासा पूर्व जो ज्ञान होता है वो अज्ञान का नाशक है, ज्ञान स्वतः अज्ञान का नाशक नहीं है, ये तात्पर्य। जब ज्ञान अज्ञान आपस में दोनों रहते हैं, सब में ज्ञान अज्ञान रहता है, वो स्वतः ज्ञान रहता है, उसमें नाशक नहीं है। जिस तरह से गाय बीमार होगी, इसको इतना काली मिर्च दे दो और इसको घी दे दो, तो काली मिर्च दे दी, घी नहीं दिया, घी तो गाय में है ही, वो गाय में रहता हुआ घी गाय के काम नहीं आता, वो निकाल कर दिया जाए तो काम आ जाएगा। ऐसे आप में रहता हुआ ज्ञान आपको काम नहीं आता, और आपका ज्ञान ही गुरु के द्वारा ज्ञान मिलता है। गुरु के द्वारा नया ज्ञान नहीं मिलता है, गुरु देता कुछ नहीं है, केवल आपको संकेत कहते ये तुम्हारा बोध है, तुम्हारा स्वरूप है। ऐसे करने से आप खुद उसको जानते हो, तो स्वयं आत्मन आत्मा तुम वेद तुम पुरुषोत्तम प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्ट है, अपने से अपने आप में तुष्ट होगा। तो वे क्या करते हैं गुरु, केवल तुम्हारे रहने वाले ज्ञान को जागृत करते हैं, ज्ञान देते नहीं है कि आप में ज्ञान का अभाव है ये बात नहीं है, किंतु आपका लक्ष्य बदल देते हैं, आपकी दृष्टि बदल देते हैं, दृष्टि बदलने प्राप्ति हो जाती है। तो प्राप्ति आपके स्वरूप की होती है, क्या गुरु जी देते हैं स्वरूप को? गुरु थोड़े गुरु जी ख्याल करा दे कि इधर तो आपका ख्याल नहीं था, अब ख्याल हो गया, क्या हो गया, प्राप्ति हो गई। तो नित्य प्राप्ति की प्राप्ति होती है, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति होती है, निवृत्ति भी नहीं होती है, प्राप्ति भी नहीं होती है, ये है ऐसी। परंतु जब तक प्राप्ति के लिए जिज्ञासा न हो तब तक रहते हुए काम गाय का घी गाय में रहते हुए गाय का काम नहीं आता। ऐसे आपका ज्ञान आप में रहते हुए आपका काम नहीं आता है। जब जिज्ञासा होती है तो वो अनजानपना सुहाता नहीं है, पहले तो ज्ञानपना सुहाता है, भोग सुहाते हैं, पदार्थ सुहाते हैं, संग्रह सुहाता है, ये मान बढ़ाई सुहाती है, अच्छी लगती है। तो अच्छी लगती है निवृत्ति कैसे होगी? अच्छी लगती है तो उसमें अज्ञान ज्ञान दोनों है, मान अपमान दोनों है, निंदा स्तुति दोनों है, आदर निरादर दोनों है उसमें, तो दोनों रहते हैं, दोनों रहते हुए आदर है वो निरादर का नाश नहीं करता। परंतु जब ज्ञान होता है तो आदर की कोई महत्ता नहीं रहती, तो निरादर का कोई असर नहीं पड़ता। आदर का जितना महत्व है उतना ही निरादर का असर पड़ता है। आदर का महत्व मिट जाए निरादर कुछ नहीं करेगा, ये बात आती है समझ में, वो निरादर कुछ नहीं कर सकता। तो वो निरादर रहता है, पर निरादर का निरादर आदर आदर है उसका महत्व आपके अंकित है, जो नाशवान है। इस तरह से नित्य है वो नित्य ही प्राप्त है, तो असत है इसका नाशक सत नहीं है, अज्ञान का नाशक ज्ञान नहीं है। परंतु वास्तव में जब जिज्ञासा होती है तो जिज्ञासु का अज्ञान मिटने लगता है, अज्ञानी का अज्ञान मिटने नहीं लगता, क्योंकि अज्ञानी के ज्ञान तो बहुत नाशक नहीं है। जिज्ञासु का ज्ञान जो है जितना वो जान गया है उतने अंश में नष्ट हो गया। अब वो नष्ट हो गया जितना अंश जानकारी है वो जानकारी बढ़ती रहती है, अज्ञान नष्ट होता है, अंत में ज्ञान से अज्ञान का नाश हो जाएगा। तो ज्ञान ज्ञान कौन सा? जिज्ञासा पूर्वक ज्ञान वही अज्ञान का नाशक है। स्वतः ज्ञान अज्ञान का नाशक नहीं है, किंतु अज्ञान का पोषक है। अब इस शंका बोलो।
जैसे आपने बताया कि आप ही मन इंद्रिय आदि को सता देते हो, मन इंद्रिय आदि को सता आपसे ही मिलती है,
आपसे मिलती है,
पता नहीं
चला तब तो कहना पड़ता नहीं, पता चला तो कहने की क्या जरूरत थी? ये जो वेतन करने की जरूरत तभी तो है, पता नहीं चलता है। आपको बतावे धन का भीतर लोभ है तब तो धन महत्व दिख, धन में महत्व दिखता है, तो धन में खुद में महत्व है। कुत्ते के सामने मोरों की थेल रख दो और पेशाब कर चला जाएगा, अगर मोर महत्व है तो कुत्ते का आकर्षण होना चाहिए। तो धन में खुद में आकर्षण नहीं है, आपने महत्व दे दिया अब उसमें आकर्षण पैदा हो गया। ऐसे मात्र भोग में महत्व हमने दिया है तो वो खेलता है, बीड़ी सिगरेट छूटती नहीं आप पी सकते हो क्या? हम नहीं पी सकते, मन वो छूटता नहीं है, क्योंकि आपने उसको सत्ता दे दी, अब कैसे छूटे? अब प्रश्न छूटता नहीं। तो सत्ता चेतन के द्वारा ही जड़ को मिलती है, मात्र जितने अवगुण दुर्गुण दुराचार है वो गुणों की कमी ही मालूम देती है, दुर्गुण खुद दुराचार खुद सत्तावान नहीं है। आपके द्वारा सत्ता मिलती है, परंतु जब उनकी जिज्ञासा हुई थी कि भाई वैष्णव को नहीं रखता है तो वो बात फिर वैष्णव को बचा देगी। अव्यसन पना वैष्णव को मिटाता नहीं, अव्यसन की आपकी आवश्यकता हो जाएगी तो वैष्णव मिट जाएगा। सब जगह जीकार है, सब भाई, और अवगुण खुद है नहीं, गुणों की कमी है, उसको इनाम अवगुण है कमी का ही। और कमी आप सहते हो तो आपकी रखी हुई है तो आपने सत्ता दी कमी को, भोगे छोक आपने दी, संग्रह की इच्छा को शक्ति आपने दी, इस बात में ज्यादा बात होता है। स्वतः उनमें आकर्षण नहीं है, स्वतः उसमें महत्ता नहीं है, ये बात है। नारायण 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 नारायण, फिर इसमें जो तो शंका हो आप फिर करो, बहुत समय हो गया।